सर ये एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी कि ऐसे लगता है कि जैसे मर्द और औरत जो हैं उनको इक्वल बनाया गया है उनके दायरा एकार जो हैं वो मुख्तलिफ करके, लेकिन कुरान में कुछ जगह ऐसी कंफ्यूज करती हैं जैसे कि एक जगह मर्द को कवाम कहा है और औरत उसके ताबे हो जाती है, फिर एक जगह अगर औरत सरकशी करती है तो उसको आखिरी दर्जे में मारने का हक दे दिया गया है आदमी को, और फिर ये कि किसी भी जगह हमें औरत पैगंबर के रूप में नजर नहीं आती। तो ये सारी बातें कुरान से ऐसा लगता है कि जैसे औरत को थोड़ा सा लेसर स्टेटस दे देती है, तो क्या ऐसा ही है कि औरत अपनी इस लेसर स्टेटस को जान ले और उस पर मुतमईन हो जाए, या ये समझ में गलती है?
पहले तो ये बात समझ लीजिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात पैदा की हैं, जाहिर है उनके दरमियान सलाहियत के लिहाज से, ज़ौक के लिहाज से, रुझानात के लिहाज से और उनकी अपनी जबिल्लत के लिहाज से बहुत फर्क रखा है। इंसान की हैसियत से औरत और मर्द बिल्कुल बराबर है। कुरान मजीद ने यह बताया है और इस सारे फलसफे की जड़ काट दी है कि जिसमें कोई तफावत आप पैदा कर सकेंगे, ये सब आदम हब्बा की औलाद है। ये बता दिया है कि हमने तुमको नफ्से वाहिदा से पैदा किया, उसी की जिन्स से उसका जोड़ा बनाया, लिहाजा इस बुनियाद पर कोई फर्क इनके माबैन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बिल्कुल वाजे बात है कि अपनी तबीयत के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से, उफ्ताद तबा के लिहाज से औरत मर्द से मुख्तलिफ है, यानी कमजोर या कमतर होना जेर बहस नहीं है, मुख्तलिफ होना जेर बहस है। जब वो मुख्तलिफ है तो बाद अहकाम में भी इख्तलाफ रहेगा। चुनाचे हम देखते हैं कि शरीयत तो एक तरफ रही, जो जबिल्ली कैफियतें हैं उनमें भी बहुत फर्क है। जाहिर है कि जिनसी मामलात में औरत और मर्द में फर्क रखा गया है, इसी तरह से नफ्सियाती मामलात में औरत और मर्द का फर्क बिल्कुल वाजे है। तो ये इख्तलाफ है, इस इख्तलाफ के बारे में भी कुरान मजीद ने यह बात वाजे की है कि इनमें से हर चीज पर हर सिन्फ को फख्र करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ उसको बनाया है उसी में उसके लिए फजीलत के बहुत से मौके हैं। ये किसी की कहतरी या किसी की बर्तरी का मौजू ही नहीं। खुद मर्दों और औरतों के माबैन लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में पैदा हो रहे हैं, अल्लाह ताला ने तफावत रखा है। कोई शायर है, कोई अदीब है, किसी में बड़ी गैर मामूली अदाकाराना सलाहियतें हैं, किसी में क्यादत की सलाहियतें हैं, किसी को अल्लाह ताला ने फलसफे का ज़ौक अता फरमाया है, कोई चीजों के अंदर उतर जाता है, कोई बिल्कुल मेहनत कश है, जिस्मानी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देता है। तो ये मामलात खुद मर्दों और मर्दों के दरमियान भी मौजूद हैं। अच्छा, औरतों को देखिए तो उनमें भी यही चीज होगी। बड़ी आला दर्जे की इल्मी सलाहियतें रखने वाली ख्वातीन होंगी, इसी तरीके से बहुत सी ख्वातीन ऐसी होंगी जिनका अदब का या आर्ट का बहुत आला ज़ौक होगा। तो ये फर्क वहां भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो हुस्न पैदा किया है वो इख्तलाफ और तनव्वो से पैदा किया है। इख्तलाफ और तनव्वो एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई आदमी अगर इनकार करेगा तो वो गोया बदाहत का इनकार करेगा, यानी एक बिल्कुल वाजे बात का इनकार करेगा। अगला मरहला ये है कि फिर अल्लाह ताला ने जो शरीयत और अहकाम दिए हैं उनमें क्या चीजें अलग अलग रखी हैं। तो हमें जो शरीयत दी गई है वो असल में फर्क के मरातिब पर मबनी है, यानी खानदान की बुनियाद पर जो नज्म कायम किया है अल्लाह ताला ने उसमें फर्क के मरातिब को मलहूज रखा है। सारे इंसान बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन इन्हीं इंसानों में से जब किसी आदमी को हम अपना हुक्मरान बना लेते हैं तो एक मर्तबे का फर्क वाक्य हो जाता है। इन्हीं इंसानों में से किसी को हम अपना उस्ताद करार देकर उसके पास तालीम हासिल करने के लिए चले जाते हैं तो हमारी और उसकी खिलकत में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन मर्तबे का फर्क वाकई हो जाता है। इन्हीं इंसानों में से एक आदमी पैदा होता है, वो बेटा होता है और एक बेटी होती है, फिर उनके यहां औलाद हो जाती है तो वो मां और बाप बन जाते हैं। तो एक उनका दर्जा पहले था, एक दूसरा दर्जा उसके नतीजे में वजूद में आ जाता है। ये फर्क के मरातिब है जिसको मलहूज रखना चाहिए। जिन आयतों का आपने हवाला दिया है उनमें इसी को बयान किया गया है, यानी औरत और मर्द के माबैन कोई कवाम और गैर कवाम का रिश्ता नहीं कायम किया गया। जब एक औरत और मर्द ये फैसला करते हैं कि उनको अब बीवी और शौहर बन के रहना है तो बीवी और शौहर के माबैन ये फर्क मरातिब कायम किया गया, जैसे बाप और बच्चों के दरमियान ये फर्क मरातिब कायम किया गया है, मां और बेटे के दरमियान ये फर्क मरातिब कायम किया गया है। मां की हैसियत से एक दर्जा फजीलत हासिल है औलाद पर मां को, इसी तरह बाप की हैसियत से एक दर्जा फजीलत हासिल है बाप को, बिल्कुल ऐसे ही शौहर की हैसियत से एक दर्जा फजीलत हासिल है मर्द को शौहर की हैसियत से। हैसियतें तब्दील हो जाएंगी तो अहकाम भी तब्दील हो जाएंगे, ये बात कही गई। यही मामला तादीब के इख्तियार का है, ہماری معاشرت میں باپ کو تادیب کا حق حاصل ہے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے اور بیٹا بھی انسان ہے. اچھا بیٹا بڑی عمر کو بھی پہنچ جائے اور باپ اس کی تعزیب کرے تو شرافت اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اس کو قبول کرے. یہی صورتحال بیوی اور شوہر کے معاملے میں ہے. تو یہ تعلقات ہیں جن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، نہ کہ مرد اور عورت کا کوئی فرق کیا گیا ہے. اگر مرد اور عورت کا فرق کیا جاتا تو پھر ماں کو بھی اسی طریقے سے بیٹے کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے تھا، پھر بہن کا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں. تو جو رشتے قائم کیے گئے ان میں ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میاں کو ایک درجہ برتر رکھا گیا ہے تاکہ نظم کائنات چل سکے اور خاندان کا ادارہ وجود میں رہ سکے. اسی طریقے سے جب ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے تو ماں اور باپ کو ایک درجہ برتر رکھا گیا ہے تاکہ فرق مراتب کی بنیاد پر حسن معاشرت پیدا ہو سکے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک ریاست کی شکل اختیار کرتے ہیں اور اپنے اندر سے کسی کو حکمران بنا لیتے ہیں تو اس کے قانون کی پابندی لازم ہو جاتی ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کو تادیب کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر دنیا کا نظم نہیں چل سکتا. یہ بات ہے. اس بات پر جتنی بحث چاہے کر لیجئے، اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ عورتیں کوئی کمزور یا کمتر مخلوق ہے اور مرد کوئی برتر مخلوق ہے. یہ فرق کے مراتب کا اصول ہے اور اس اصول پر ہماری معاشرت قائم ہے. اور مغرب کے سارے تہذیبی غلبے کے باوجود ہمیں اس مقام کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. فرق مراتب، جس دن باپ اور اس کی اولاد کے مابین یہ فرق مراتب قائم نہیں رہے گا، جس دن حکمران اور اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے مابین یہ فرق مراتب قائم نہیں رہے گا، اور جس دن بیوی اور شوہر کے درمیان یہ فرق مراتب قائم نہیں رہے گا، خاندان ختم ہو جائیں گے، سوسائٹی انتشار کا شکار ہو جائے گی اور دنیا میں صرف انارکی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا.